मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 23 मार्च 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो लेक्चर में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक के मूलभूत तत्वों पर, और यह आपके सिलेबस में भी है और एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, और इनफैक्ट सच पूछिए तो यह बहुत ही वेल नोन टॉपिक है। ये जो टॉपिक है यह है जनांकिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। दोस्तों, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं नमूने के बतौर एक प्रश्न की चर्चा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा प्रश्न को सीधे सीधे, और यह 2016 में पूछा गया है, 2016 के जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर में। आप सिलेबस उठा करके देखें तो सिलेबस में बकायदे पॉपुलेशन टॉपिक दिया हुआ है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और उसी के साथ फिर आप देखेंगे कि जनसंख्या के से संबंधित जो दूसरी समस्या स्पेशली निर्धनता गरीबी पावर्टी भी उसमें टॉपिक में दिया हुआ है, और इन दोनों से हमेशा कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है। तो आप मान करके चलिए कि ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक जनांकिकी का सवाल है मित्रों, चलिए एग्जामिनेशन में तो पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर अखबारों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, भारत को जनांकिकी का फायदा है, इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलना है, इस तरह की बातें अक्सर होती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अक्सर इसकी चर्चा करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो जनांकिकी की बात कर रहे हैं तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं जनांकिकी पर आऊं, आपको 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है जनांकिकी को लेकर, थोड़ा सा वो आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए प्रश्न क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूं। भारत में जनांकिकी लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित जागरूक कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती। ये इन्वर्टेड में है, कोट, सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन से उपाय किए हैं। ये मित्रों 12.5 नंबर का प्रश्न है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया विल रिमेन ओनली थ्योरेटिकल अनलेस आवर मैन पावर बिकम मोर एजुकेटेड अवेयर स्किल्ड एंड क्रिएटिव। What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable? प्रश्न बहुत सरल है, आपके समझ में आ गया होगा। सामान्यतया फ्रेंड्स, जनांकिकी पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे अच्छी बात यह है आपके फेवर में कि वे सरल ही होते हैं। सरल इस मायने में कि वो सहज होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें घुमाव नहीं होते, बहुत इधर उधर की बातें नहीं होती। तो इस तरह से आप मानकर चल सकते हैं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उसे हल करना ही करना है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे कितने बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, कितना बेहतर उत्तर दे पाते हैं और दूसरों से अधिक नंबर ला पाते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको थोड़ी सी जनसंख्या और जनांकिकी में जो डिफरेंस है वो बताना चाहूंगा। जनरली स्टूडेंट जनसंख्या और जनांकिकी को बिल्कुल एक ही समझ बैठते हैं, यानी कि जो जनगणना हो रही है जनगणना को ही वो जनांकिकी मान लेते हैं, राइट? देखिए, जो जनांकिकी और जनगणना में जो फर्क है, या कह लीजिए कि जनसंख्या और जनांकिकी में जो फर्क है, जनसंख्या का मतलब क्या है? मनुष्यों की संख्या, कि कितने मनुष्य हैं, उसमें स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने, बच्चे कितने, वृद्ध कितने। चलिए, ये आपने थोड़ा सा कर लिया तो ये हो गया जनसंख्या, जनसंख्या का आपने के बारे में बता दिया, जो जनगणना के आधार पर हमें पता लगती है। लेकिन दोस्तों, जो जनांकिकी है वो आप यूं कह लीजिए कि जो हमारी जनसंख्या है उसका बहुत ही साइंटिफिक और एक सिस्टमेटिक स्टडी है। साइंटिफिक वैज्ञानिक सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित अध्ययन कहने का मतलब है कि जो हमारी जनसंख्या है, जो 130 करोड़ के लगभग अब हो गई है, हम इसके करेक्टर के बारे में बात करते हैं। इसके चरित्र के बारे में बात करते हैं कि इसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, इसका स्वरूप क्या है, किस आयु वर्ग के हैं, किस जेंडर के लोग हैं, किन किन क्षेत्रों में रहते हैं, उनका जीवन किस तरीके का है, उनका घनत्व तो कितना है, शिक्षा का स्तर कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, क्यों है, वृद्धि दर जनसंख्या की कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, कुपोषण की स्थिति कितनी है, कुशल कितने हैं, अकुशल कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब, मतलब इन सब की हम जब जानकारी लेते हैं या यूं कह लें कि जब हम इन सब का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है जनांकिकीय, राइट। जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आप क्या कहते हैं कि जो भी जनसंख्या आपके सामने आई है, जो सामने है, उसको फिर आप वर्गीकृत करते हैं, वर्गीकृत करने के बाद उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो जनसंख्या तो एक सीधे सीधे जनगणना हो गई, काउंटिंग हो गई, लेकिन जनांकिकी फिर वो जो कुछ भी हमारे सामने है उसका अध्ययन हो गया। तो देखिए, जो जनांकिकी है, आप कह सकते हैं दोस्तों कि केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप यूं कह लीजिए कि आंकड़े होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन होता है ये। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी चाहे वो डेवलपमेंट की बनाए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बनाए, जो भी नीति बनाएगी वो किन के लिए बनाएगी, उसे नीतियां बनानी है अपने लोगों के लिए, अपने जनसंख्या के लिए। उसको मालूम तो हो कि भाई उसकी जो जनसंख्या है, उसके जो लोग हैं, उनका चरित्र किस तरीके का है। जैसे मान लीजिए कि कहीं की जनसंख्या पूरी तरह से शिक्षित है, तो स्वाभाविक है कि सरकार अब उनकी शिक्षा के लिए कोई योजना नहीं बनाएगी। लेकिन एक ऐसा देश जहां अभी भी बहुत ज्यादा साक्षरता का प्रतिशत कम है, लोग बहुत अशिक्षित हैं, तो बट नेचुरल है कि उसकी जो प्रायोरिटी में होगी, जो नीति की प्रायोरिटी जो होगी, वो एजुकेशन होगी। तो अपने लोगों के चरित्र को जान करके ही सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है। इसका मतलब है कि जनांकिकी के बारे में, उस अध्ययन के बारे में हमारे पास जितनी परफेक्ट जानकारी होगी, जितनी विस्तृत जानकारी होगी, हम उतनी ही अच्छी नीतियां बना पाएंगे और तभी हमारी जो योजनाएं हैं उनके सही परिणाम सामने आ सकेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे हमारी जनसंख्या है और हमारी जनसंख्या में दो, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत है वो आपको मालूम है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं 16.6% के आसपास है और जो ट्राइब्स के लोग हैं 8.6% के आसपास है, राइट। यानी कि दोनों को आप मिला लीजिए तो लगभग लगभग हमारे देश की 1/4 आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। अब जब सरकार कुछ नीति बनाने जा रही है, मान लीजिए जो नीचे निम्न तबके के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके उत्थान की बात हो रही है या देश के आर्थिक विकास की बात हो रही है, इंक्लूसिव समावेशी विकास की बात हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर अब सरकार को जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए कुछ अलग से नीतियां बनानी पड़ेंगी। उनको आप सभी के बराबर ला करके तो नीतियां नहीं लागू कर सकते। अब जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, तो उसमें कहीं न कहीं जनांकिकी की भूमिका है। क्योंकि यह पाया गया कि जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति के लोग हैं, ये आर्थिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, तो इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत जरूरी है कि इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही सिंपल रूप में आप समझ सकते हैं कि जनांकिकी किस तरीके से सरकार की नीतियों के निर्धारण के लिए एक तरह से रोड मैप का काम करती है, सीधे सीधे रोड मैप का काम करती है, राइट। तो एक मैंने उदाहरण के जरिए जनांकिकी के महत्व को आपके सामने दोस्तों रखा है, राइट। अब आइए हम देखते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, चूंकि हम बेसिक्स की ही बात कर सकते हैं, बहुत डिटेल में फ्रेंड्स नहीं जा सकते, तो हमारी जो जनांकिकी है उसकी विशेषता क्या है, थोड़ी सी संक्षिप्त में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों, एक बात आप मान करके चलिए कि हम चाहे अपने को जितना भी महान राष्ट्र कह लें और हैं हम, और विश्व का गुरु कह लें और एशिया की बहुत बड़ी शक्ति कह लें, लेकिन जब जनांकिकी संरचना के बारे में सोचते हैं तो अभी भी जो भारत की जो जनांकिकी संरचना है वो एक पिछड़े हुए राष्ट्र की है, मतलब पिछड़ी हुई जनांकिकी संरचना है। देखिए, जब हम पिछड़ी हुई जनांकी की संरचना कह रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं, नॉट एट ऑल। जब हम पिछड़ी और अगड़े की बात करते हैं तो वो एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक अध्ययन इस मायने में कि हम जब दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने को काफी पीछे पाते हैं। देखिए, जब हम एशिया से तुलना करते हैं तो हो सकता है कि कुछ राष्ट्रों की तुलना में हम बहुत अच्छे हों, जब अफ्रीका से महाद्वीप के देशों से तुलना करेंगे तो हम ऑलमोस्ट सभी देशों से बेहतर होंगे, लेकिन एशिया में भी दूसरे राष्ट्र हैं जो हमसे बहुत अच्छी स्थिति में, आप जापान को क्या कहेंगे, यहां तक कि चाइना को, चाइना का जीडीपी देख लीजिए, वहां का लिटरेसी रेट देख लीजिए, वहां पर या प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों का घनत्व देख लीजिए, वो सब हमसे बेहतर है, जबकि जनसंख्या के मामले में वो हमसे थोड़े से ज्यादा है। तो इस रूप में पिछड़ी जब शब्द का जो मैंने इस्तेमाल किया है वो तुलनात्मक रूप में है। और ये पिछड़ी जनांकिकी इसको क्यों कहा जाता है मित्रों, आइए इस पर अब हम थोड़ी सी निगाह डालते हैं। यूं कह लीजिए कि मैं ये नहीं कहना चाहिए कि पिछड़ी जनांकिकी क्यों कहा जाता है, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि हम ये कहें कि जो भारत की जनांकिकी संरचना है उसकी क्या मुख्य करेक्टर है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। यहां मैं एक शब्द और आपको एक शब्द का अर्थ बता दूं फ्रेंड्स, ज्यादा अच्छा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मैं उसे भूल जाऊं। प्रश्न पढ़ते समय मैंने कहा जनांकिकी डिविडेंट, राइट, डेमोग्राफिक डिविडेंट, इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट और हिंदी में हम कहते हैं जनांकिकी लाभांश। ये जनांकिकी लाभांश क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इसकी चर्चा भी करते हैं। देखिए, लाभांश का क्या मतलब, लाभ का अंश, यानी कि जो कंपनी लाभ कमाती है, जो उसे प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा वो अपने साझेदारों को दे देती है, शेयर होल्डर्स को दे देती है। शेयर होल्डर्स मतलब साझेदार, जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो जितने जितने शेयर हैं उस अनुपात में वह उनको लाभ दे देती है, वो पैसा दे देती है, जिसे हम कहते हैं लाभांश। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, इसे समझने के लिए, मतलब वो यही नहीं है जैसे कि काम करने वाले मजदूर या दूसरे लोगों को बोनस मिलता है, वहां बोनस कहा जाता है, यहां इसे लाभांश कह लीजिए, ये डिविडेंड है। तो जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भारत की जनसंख्या आज 130 करोड़ है, राइट, 130 करोड़, तो ये हमें बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। लेकिन ये जो हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या है, इसकी वजह से भारत को कुछ दूसरे बहुत से लाभ मिल रहे हैं, बहुत से लाभ मिल रहे हैं, और खासकर जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है तब से तो देखिए हमारे पास इतनी ज्यादा श्रम शक्ति है। अब हम उसको श्रम शक्ति के रूप में देखें, लेबर के रूप में देखें, तो हमारे पास बहुत बड़ी श्रम शक्ति है। और चूंकि हमारे पास श्रम शक्ति बहुत है, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक लैंग्वेज में बात करें, इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो हमारे पास श्रम की सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहां श्रम सस्ता है। और अगर हमारे यहां श्रम सस्ता है, आप आइए हमारे यहां उद्योग लगाइए, तो हम FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहां जो श्रम आधारित वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जो उत्पादन होगा वो सस्ता होगा, क्योंकि हमारे यहां श्रम सस्ता है। अगर वो सस्ता होगा तो बट नेचुरल है कि विश्व बाजार में हमारी वस्तुएं सस्ती होंगी, तो हम उनसे कॉम्पीट कर सकेंगे, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ सकेंगे, तो हम हमारी चीजें ज्यादा बिकेंगी। तो दोस्तों, ये डिविडेंड का कहा जाता है। हमारे यहां युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है। युवा जनसंख्या की बात इसलिए की जाती है कि उसमें कार्य करने की क्षमता है, मतलब ये नहीं कि हमारे यहां श्रम को हम केवल 130 करोड़ से आंक रहे हैं, नहीं, 130 करोड़ में भी आधे से अधिक आबादी हमारी श्रम प्रधान आबादी है, वो कार्य करने की स्थिति में। जबकि कुछ देश ऐसे जैसे जापान वगैरह, तो वहां वृद्धों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसको लेकर के देश में एक तरीके से समस्या भी पैदा हो गई है, वृद्ध, तो अब वृद्ध काम तो नहीं कर सकते, बल्कि आपको वृद्धों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लानी पड़ेंगी। लेकिन भारत में कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको देखते हुए हम कहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, लाभांश की स्थिति में है। अब देखिए, जो आपने अभी प्रश्न सुना उसमें वो क्या कह रहा है कि भाई हम लाभांश की स्थिति में तो हैं, हम इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कब, तब जबकि हमारी ये जो पॉपुलेशन है, हम अपने इस पॉपुलेशन को दक्ष बना सकें, वो काम करने लायक हो, काम करने में कुशल हो, यानी कि हम उनको स्किल्ड कर सकें, उन्हें लिटरेट कर सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें और उन्हें जागरूक भी कर सकें, अवेयर कर सकें अपने अधिकारों के बारे में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, उनमें क्रिएटिविटी पैदा कर सकें, तब जाकर के हम सही मायने में हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है इसका फायदा उठा सकेंगे। अदरवाइज जनसंख्या है, डल है, वो काम नहीं कर पा रही है, वो स्किल्ड नहीं है, तो दूसरे देशों से हम पिछड़े रहेंगे और ऐसी स्थिति में जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है वो फायदे के बदले में हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो डिविडेंड कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है जनसंख्या को लेकर के, उसका अर्थ इसी बात से है। मित्रों, अब मैं आपसे थोड़ी सी एक माफी ये चाहूंगा कि मुझे आपसे भारत की जनांकिकीय संरचना के बारे में बात करनी थी, लेकिन वक्त हो चला है और अगर मैं एक दो मिनट ले भी लूं और तो उसमें जनांकिकीय संरचना की बात नहीं की जा सकेगी, तो बेहतर होगा कि इससे आप अब अगले डेली ऑडियो लेक्चर पर छोड़ दीजिए। मैं अगले डेली ऑडियो लेक्चर में इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा। राइट फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है दोस्तों, दो दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तो ये जो छुट्टी के दो दिन हैं, आपके बड़े सृजनशील रहें, बड़े खुशनुमा रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।